ओम शिव 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 शिव। अनंत कृपा के सागर परमपिता परमात्मा की अहेतु की कृपा से गुरुजनों के शुभ आशीर्वाद से अपने पुण्य कर्मों के उदय होने से भगवान की विभूति स्वरूप पावन सागर के तट पर देवादिदेव महादेव बाबुलनाथ जी के पावन सानिध्य में गुरुजनों की इस पवित्र तपस्थली में बैठकर हम सब साधक प्रातःकालीन इस सत्संग सत्र में जीवन को कैसे पवित्र करें, जीवन को कैसे धन्य करें, इसका अनुचिंतन आचार्य शंकर के विरचित धन्याष्टकम के माध्यम से कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने द्वितीय श्लोक के आधार पर ये मनन किया था, साधना का प्रारंभ साधक को कहां से करना है, उसके आरंभिक चरण क्या है। आदौ विजित्य विषयान, विषयाशक्ति को साधक को प्रथम कंट्रोल करना है, अपना आचरण प्रथम शुद्ध करना है। डॉक्टर कितना भी एक्सपर्ट हो, मेडिसिन कितनी भी परफेक्ट हो, आपने डॉक्टर को दिखाया, एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाया, उसने ठीक ठीक हमारे रोग को समझा, औषधि भी ठीक ठीक निश्चित की, ठीक मात्रा में औषधियों को लिख करके दिया, मेडिकल पर चले गए, खरीद के ले आए और ला करके बक्से में रख दिया, हम स्वस्थ होंगे कि नहीं होंगे, हमारी बीमारी मिटेगी कि नहीं मिटेगी। शास्त्र कितना भी परफेक्ट हो, गुरु का मार्गदर्शन कितना भी उचित हो, हम जब तक जीवन में उतारने के लिए तैयार नहीं होंगे, ना शास्त्र सफल हो पाएगा, ना गुरु सफल हो पाएंगे, ना डॉक्टर सफल होगा, ना वो मेडिसिन निर्माण करने वाले लोग वैज्ञानिक सफल होंगे जिन्होंने अनुसंधान किया, जब तक हम उस दवाई का ठीक से प्रयोग नहीं करेंगे। इस चिकित्सा शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र बड़ा मिलता जुलता, इसलिए बार बार मैं दृष्टांत देता हूं उधर से। दूसरी एक प्रॉब्लम और है, जब स्वास्थ्य का निर्माण करना होता है तो दो काम करना होता है, एक दवाई का ग्रहण करना होता है, पथ्य का ग्रहण करना होता है और कुपथ्य का परित्याग करना होता है जिसके कारण अस्वास्थ्य का निर्माण हुआ था। हम दवाई यदि खाते जाए और साथ साथ में कुपथ्य को भी खाते जाए तो या तो दवाई काम करेगी नहीं अथवा जिस मात्रा में काम करना चाहिए था उस मात्रा में काम करेगी नहीं। ऐसा तो कोई विरलाई मूर्ख होगा कि दवाई खरीद करके लाए और बक्सा में रख दे, ऐसी तो मूर्खता हम लोग प्राय नहीं करते हैं। दवाई लाते हैं, खाते भी हैं, परंतु लालच से जो थोड़ा थोड़ा नहीं खाना चाहिए, जो कुपथ्य है जिसके कारण आरोग्य खराब होता है, उसको भी खाते रहते हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हम यही करते हैं, सत्संग सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, परंतु साथ साथ में कुछ गैप्स ऐसे हैं जहां से हमारी वृत्तियां, जहां से हमारा जीवन, जहां से हमारी चेतना ऐसी वस्तुओं में प्रवृत्त होती है जो फिर हमें वहीं ले जाकर के खड़ा कर देती है जहां पर हम पहले खड़े थे। इसलिए आदौ विजित्य विषयान, ये कंट्रोल करने की बात है, ये लगाम लगाने की बात है, ये हमें अपने स्तर से करना है और एकदम आरंभ से ही करना है। भगवान ने गीता जी में इसी बात को याद दिलाया, युक्त आहार विहारस्य योगो भवति दुःखहा। डिसिप्लिन यदि लाइफ होगा तभी आप योग की उच्च भूमिकाओं में हम आरोहण कर पाएंगे। आगे यहां भगवान वास्तेकार भी वही बात बताते हैं, आहृत योग राज्या, योग राज्य के ऊपर जिन्होंने अधिकार प्राप्त किया है दो स्टेज पर काम करते हुए, अपने विषयों की आसक्ति को कंट्रोल करते हुए और अपने द्वेषादि शत्रुओं का परिमार्जन करते हुए, ऐसा जो कर पाएंगे वही ज्ञात्वा अमृतम, जो अमृत तत्व है उसको जान करके परात्म विद्या कांता शुका वन गृहे विचरन्ति धन्या। पराविद्या आत्मविद्या उनकी सहचारिणी होगी और उसको लेकर के एकांत वन में वे शांति से जीवन यापन करेंगे। वन गृहे विचरंती धन्या, इस पद के ऊपर मैं थोड़ा सा और ध्यान दिला करके फिर और आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि हमारे शास्त्रकारों की एक टेक्निक होती है। ग्रंथ का मतलब ही होता है जब विचारों का ग्रंथन होता है, ग्रंथन का मतलब होता है जैसे माला गूंथी जाती है, एक मणिके के साथ दूसरा मणिका, दूसरे मणिके के साथ तीसरा मणिका, तीसरे मणिके के साथ चौथा मणिका, एक सिस्टमेटिक ढंग से जुड़ा होता है। विचार की भी अपनी एक पद्धति होती है, एक विचार के साथ दूसरा विचार जुड़ा होता है, पूर्व अध्याय के साथ उत्तर अध्याय जुड़ा होता है, पूर्व श्लोक के साथ उत्तर श्लोक जुड़ा होता है। जब उसका ग्रंथन क्लियर हो जाए तो बात समझने में ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। इसलिए इस श्लोक का जो अंतिम पद है, वन गृहे विचरंती धन्या, कौन धन्य है जो वनवास करने में समर्थ हैं। इसका अभिप्राय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? अभी अभी तो बता रहे थे विजित्य विषयान, विषयों की आसक्ति को जीत लीजिए आप, शत्रुआदि दोषों को पराजित कर लीजिए और सीधे आ गए आप वनवास चले जाइए। यहां वन गृहे विचरंती धन्या, इसका सीधा तात्पर्य आचार्य शंकर का ये नहीं है कि आप घर छोड़ करके सीधे सीधे जंगल में चले जाइए, क्योंकि आगे कुछ बातें और बाकी है, अभी तैयारी और करना जरूरी है। और बिना तैयारी के यदि आप बड़ा स्टेप्स लेते हैं तो बहुत बार अच्छा करने की जगह खराब होता है। वनेपि दोषा प्रभवंति रागिणाम, हृदय में यदि राग बैठा हुआ है, हृदय में अपनी आसक्ति बैठी हुई है, हृदय में यदि कामनाएं बैठी है, तो वन में भी दोष जन्म ले लेंगे। इतिहास आपके सामने दर्पण बन करके खड़ा है। एक इतिहास आपको सुना देता हूं, हम अपने साथ कैसे काम करें। क्या नाम था ऋषि का, लोमस पाद शायद, मेरे को ठीक से स्मरण नहीं आ रहा, मैं इतिहास सुना दे रहा हूं, उसका जो मैसेज है वो हम लोग ग्रहण कर लें। तो उस ऋषि ने, ऋषि श्रृंग के पिता थे सर, ऋषि श्रृंग नहीं था, क्या नाम था, तो उन्होंने निश्चय किया कि उनकी जो संतान होगी उसको वे समाज में रखेंगे ही नहीं, लोकालय में रखेंगे ही नहीं, जनसंपर्क में रखेंगे ही नहीं। इसलिए जब उनके पुत्र का जन्म हुआ, वो लेकर के घनघोर जंगल में रहने के लिए चले गए, जहां जनसंपर्क नहीं था, लोगों का आना जाना नहीं था। और ऋषि एक नदी के किनारे एकांत में कुटिया बना करके अपने पुत्र का पालन पोषण करते हुए, वहां जंगल से फल पुष्पों का आहरण करते हुए, फल पुष्प कंदमूल खा करके जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे 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 काल गुजरता गया। वो युवक जो एक दिन शिशु बनकर के जंगल में आया था, जंगल में खेलते 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 अब युवा हो गया, 20 साल 22 साल की उसकी उम्र हो गई। संयोग कुछ ऐसा बना, जिस राज्य में वो जंगल था उस राजा के यहां बहुत वर्षों से भयंकर अकाल पड़ा। जब नारद ऋषि आए, राजा ने इसका समाधान पूछा तो कहा कि एक ही इसका समाधान है, उस ऋषि कुमार के साथ यदि तुम्हारे कन्या का विवाह हो तभी वृष्टि होगी। राजा ने कहा कि महाराज ये कैसे संभव होगा, हमने तो सुना है कि उनके पिताजी उनको अत्यंत बाल्य अवस्था में जन्म के समय से लेकर के जंगल में चले गए, और केवल इसलिए चले गए कि ये जन संपर्क में ना रहे, लोकालय में ना रहे, लोगों के संपर्क में ना रहे, और इसमें कामादि विकार पैदा ना हो। और आप कह रहे हैं कि उसके साथ हमारे कन्या का विवाह हो, ये कैसे संभव है। कहा कि नहीं तो ये प्रजा इस महान अकाल में मर जाएगी, एक ही रास्ता है उस ऋषि कुमार के साथ आपकी कन्या का विवाह हो। विभांडक ऋषि, मुझे नाम याद आया उनका, कथा थोड़ी विचित्र है। उस नगर की जो श्रेष्ठ और वृद्ध वेश्या थी, महाराज ने जब ये प्रस्ताव रखा नगरी वालों के सामने, भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, इस अकाल से परित्रपण का पार जाने का केवल एक ही रास्ता है, विभांडक ऋषि के, ऋषि कुमार के साथ हमारे कन्या का विवाह हो, तभी इस नगरी में वृष्टि होगी, नहीं तो अकाल से पूरे प्राणी मर जाएंगे। मंत्रियों के पास यदि कोई रास्ता हो तो बताइए, सुविज्ञ जनों के पास कोई रास्ता हो तो बताइए, नागरिकों के पास कोई रास्ता हो तो बताइए, क्योंकि ऋषि से जाकर के कौन लड़ाई मोल ले। और वो इसी संकल्प से अपने संतान को यहां से लेकर के गए हैं कि वो लोकालय में नहीं रहेगा, और उसके भीतर काम आदि का जागरण नहीं होगा, और काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार जब चित्त में जागृत नहीं होंगे तो वो एक दिन परमात्मा का भक्त बन करके, जिसके कारण जीव पैदा होता है, उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। एक वृद्धा वेश्या ने कहा कि महाराज यदि आपका आदेश हो, आपकी आज्ञा हो तो ये काम मैं कर सकती हूं। समष्टि का हित देखते हुए, नगरी का कल्याण देखते हुए राजा ने उस वेश्या को आज्ञा दी कि तुम ऋषि कुमार को जैसे भी हो इस नगरी में लेकर के आओ। वेश्या अपने तीन चार सहकर्मियों को लेकर के, एक नौका लेकर के, नदी के किनारे ही ऋषि का आश्रम था, लेकर के वहां चली गई। जहां पर ऋषि की कुटिया थी, आश्रम था, उससे थोड़ा दूर उन्होंने अपनी नौका को रोका, एक आश्रय बनाया और ऋषि के क्या क्रियाकलाप होते हैं उनके ऊपर उन्होंने दृष्टि रखना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसको पता चला आश्रम की दिनचर्या, कब ऋषि आश्रम में रहते हैं, कब ऋषि वन में लकड़ी चयन करने के लिए जाते हैं, फल चयन करने के लिए जाते हैं, विचरण करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी ऋषि ने उस ऋषि कुमार के ऊपर प्रतिबंध लगा करके रखा था, जंगल से यदि बाहर जाएगा पशुओं को काम विहार करते हुए देखेगा, पक्षियों को काम विहार करते हुए देखेगा, काम केलियां करते हुए देखेगा, हो सकता है इसके मन में विकार पैदा हो जाए। प्रायश ऐसा ही तो होता है। सोबरी ऋषि का दृष्टांत हम लोगों के सामने है। हजारों वर्षों तक जल के नीचे बैठ करके, यमुना के जल में समाधि लगा करके तपस्या कर रहे थे, मत्स्य परिवार को विहार करते हुए देखा, काम संकल्प जागृत हो गया और एक लंबा छोड़ा परिवार पैदा हो गया। वहां पर भी वो ऋषि कुमार के ऊपर अनुशासन रखते थे कि आश्रम के परिसर से बाहर न जाए। देखो, हमें अपने साथ किस दिशा में काम करना है, इस बात को सामने रखने के लिए मैंने ये इतिहास उठाया है। जब उन वेश्याओं को पता चल गया कि इस समय में ये महाराज या नहीं रहते हैं, तो उस वृद्ध वेश्या ने एक युवती को एक दिन उस समय उस आश्रम में भेजा, सुंदर मिष्ठान देकर के, सुंदर पानीय पदार्थ देकर के। उस ऋषि कुमार ने आज से पहले ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसा सुंदर आकार, ऐसा सुंदर रूप कभी नहीं देखा था। जब वो कन्या वहां उसके आश्रम में गई, उसने वो मिष्ठान निवेदन किया, उसने वो पानीय पदार्थ निवेदन किया, उसने उसके साथ बैठ करके बातें की, ऋषि कुमार को बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा, मैं इतना बड़ा हो गया, ऐसे मधुर फल मैंने कभी नहीं खाए जिसमें बीज नहीं होते हैं। वन में जो भी फल होते हैं उसके भीतर तो बीज होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे तो आश्रम के आसपास ऐसे ही फल होते हैं जिसमें बीज होते ही नहीं। उस ऋषि कुमार को ये पता तक नहीं था, ये मिठाई है, ये रसगुल्ला है, रसगुल्ला के भीतर बीज नहीं होते हैं, ये पेड़ के भीतर लगा हुआ नहीं है, ये तो दूसरे पदार्थों से बना हुआ है। वो अनभिज्ञ था। उसने कहा कि इस देखो, इस ब्रह्मचारी का कंठ कितना मधुर है, हमने तो इतना मधुर कंठ कभी सुना ही नहीं। फिर जब उसको पता चला कि ऋषि के आने का टाइम हो गया है, तो उसने कहा कि ब्रह्मचारी, जब हम चले जाएंगे, हमारा आश्रम यहां से थोड़ा ही दूर है, हमारा जाने का टाइम हो गया, आप हमें आज्ञा दीजिए। ऋषि कुमार उदास हो गया, बोले तुम चले जाओगे? हाँ, बोले हमारे गुरुजी ने कहा कि पास में ही आश्रम है, थोड़ा हम मिल के आपको फल दे करके आ जाएं, आपको प्रणाम करके आ जाएं, हमारे गुरुजी अब इंतजार करते होंगे, हमको जाना पड़ेगा। चली गई। अब ऋषि कुमार दोबारा उनका चिंतन करे, कितना सुंदर कंठ था, कितना सुंदर रूप था, कितना सुंदर आकार था, कितने सुंदर फल थे। पिताजी तो हमारे ऊपर बहुत अनुशासन रखते हैं, शायद पिताजी को हम ये सब चीजें बताएंगे तो ब्रह्मचारी को दोबारा आने नहीं देंगे। उसने पिताजी को बताया भी नहीं। देखो काम का आकर्षण हमारे चित्त के भीतर कितने गहरे में घुसा हुआ पड़ा है, इससे भाग करके हम बच नहीं सकते। ये इस पूरे हिस्ट्री का मुख्य जो मैसेज है, पलायन करेंगे तो रक्षा नहीं है। मैं इसके कंक्लूजन पर आ रहा हूं, पहले ये कथा पूरी कर दूं। फिर दूसरे दिन ठीक टाइम पर वो ब्रह्मचारी दोबारा आया, उनको भेंट दिया, फल दिया, बातें की। धीरे 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 इनका प्रेम बढ़ने लगा, इस ऋषि कुमार का आकर्षण बढ़ने लगा। अब उस वेश्या को जब समझ में आ गया कि ऋषि कुमार अच्छी तरह से आकृष्ट हो गया है, एक दिन उन्होंने बताया कि ब्रह्मचारी जी, अब हमारे गुरुजी ने यह बताया है कि हमारा जो पुराना एक दूसरा आश्रम है, हम सब लोग अब वहां चले जाएंगे, कल से अब आपके साथ हमारी मुलाकात नहीं होगी। उद्विग्न हो गया, कल से आप नहीं आएंगे, ये इतने मीठे फल हमको नहीं मिलेंगे, आपका इतना सुंदर व्यवहार हमको नहीं मिलेगा, आपकी इंद्र सुंदर वाणी हमको सुनने के लिए नहीं मिलेगी। कहा कि ब्रह्मचारी जी क्या करें, जाना पड़ेगा हमारे आश्रम में। बोले आपके आश्रम में और ब्रह्मचारी है कि नहीं है, गुरुजी है क्या? बोले हमारे सब ब्रह्मचारी हमारे ही जैसे हैं, हमारे गुरुजी भी हमारे ही जैसे हैं, सब ऐसा ही मीठा व्यवहार करते हैं। तो उस ऋषि कुमार ने कहा कि क्यों ना हम आपके ही साथ चल दे, फिर यहां जंगल में अकेले पड़े पड़े क्या करें। कहा कि ऐसा है, हम हमारे गुरुजी को पूछ करके आएंगे कल, आपको भी किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, हमारे गुरुजी ने यदि परमिशन दिया तो हम ले जाएंगे। आज ऋषि कुमार ने हिम्मत करके अपने पिताश्री से, अपने गुरु से चर्चा की, ऐसा ऐसा एक ब्रह्मचारी आता है, बहुत दिन से आता है, ऐसे ऐसे मधुर फल ला करके देता है जिसमें बीज भी नहीं है, ऐसा मधुर पानीय पदार्थ ला करके देता है, इतनी सुंदर उसकी वाणी है, इतना सुंदर उसका कंठ है, क्यों ना हम पूरा उन ब्रह्मचारियों के आश्रम में ही चले जाएं। ऋषि विभांडक ने देखा ये क्या समस्या है, यहां कौन ब्रह्मचारी पहुंच गया। उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान दृष्टि से देखा कि पूरा एक जाल बिछा हुआ है। तो ध्यान से उठे और कहा कि सावधान और खबरदार, ये धोखा है, ये कपट है, ये छल है, तुम्हारे हृदय के भीतर काम का बीज अंकुरित हो रहा है, ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ये ठग और कपटी लोग हैं, हम उनके साथ नहीं जा सकते, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए आज यदि कोई दोबारा आए तो उसको भीतर मत घुसने देना, बात करना तो बहुत दूर की बात है। ऋषि को विश्वास था मेरी संतान है, मेरा आदेश मानेगा, मेरा अनुशासन मानेगा, इससे पता चलता है वासना की जड़ें कितनी मजबूत होती है, वासना की फोर्स कितनी मजबूत होती है। दूसरे दिन जब ऋषि बाहर ही नहीं गई, पहरा लगा करके रखा, वो लोग भी सावधान थे कि आज ऋषि बाहर गए नहीं है, पहरा बैठा है। 5-7 दिन जब ऋषि बाहर नहीं गए, एक दिन जब अब इधर ये ब्रह्मचारी भी उद्विग्न हो रहा है, गुरुजी बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं, ये यहां क्यों बैठे हुए हैं। एक दिन जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी जी, हम तो 2-4 दिन रुक गए, परंतु आज तो हमको जाना ही पड़ेगा, हमारा सामान पूरा पैक हो गया है, हम आपको अंतिम ओम नमो नारायण बोलने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप चलेंगे तो हम भी अब आपके ही साथ चलेंगे, इस जंगल में और अकेले रह करके क्या करेंगे, साथ साथ में ही साधना करेंगे, साथ साथ में ही तपस्या करेंगे, चले हम आपके साथ चलते हैं। वो ऋषि कुमार उनके साथ चला आया, नगर में आया, बारिश हुई, उसकी शादी हुई, उसकी संतानें हुई, ये तो एक अलग पूरी कथा है, एक पूरा इतिहास है। इसका मैसेज क्या है, इसका मैसेज है वन में चला जाना मुख्य नहीं है, अपनी वासनाओं के ऊपर, अपनी कामनाओं के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर समझदारी पूर्वक अंकुश लगाना जरूरी है। असमझदारी से, अविवेक से, उद्वेग से लिया हुआ निर्णय, किया हुआ परिश्रम, की हुई तपस्या इस विषय में सफल नहीं हो सकती। जितना आप इसके दुर्गुणों को समझेंगे, कैसे ये हमें दीनहीन बना करके बैठे हैं, कैसे ये हमारे दिल में अधिकार जमा करके बैठे हैं, कैसे ये हमें दिन प्रतिदिन पीड़ित कर रहे हैं, जब विवेक करेंगे, इसके परिणाम का जब चिंतन करेंगे, आज यदि मैं काम के आवेग में बह गया, क्रोध के आवेग में बह गया, लोभ के आवेग में बह गया, तो काम क्रोध लोभ मोह के भीतर ये जिंदगी तो कल कट जाएगी, बीत देखते देखते दिन निकल जाएंगे और इसका रिजल्ट क्या होगा, फिर अनंत काल के लिए एक अधेरी यात्रा में मैं चला जाऊंगा, न जाने नरक के किस कोने में पड़ा रहूंगा, कितने कष्ट पाऊंगा, बड़े सौभाग्य से तो मुझे ये मनुष्य जन्म मिला है, अनंत यात्राओं को, अनंत कष्टों को, अनंत पीड़ाओं को, अनंत वेदनाओं को पार करते करते मैं मनुष्य जन्म की दहलीज पर पहुंचा हूं, क्या मनुष्य बन करके भी मैं अपना इतना बड़ा अनर्थ कर सकता हूं? ऐसा विवेक, ऐसा चिंतन जब हमारे मन में उदित होगा और प्रतिष्ठित होगा, तो हमारा घर ही एकांत कोना बन जाएगा, हमारा घर ही वन बन जाएगा। और ऐसा विचार पैदा नहीं हुआ, ऐसा विवेक पैदा नहीं हुआ, ऐसा चिंतन पैदा नहीं हुआ, तो काम तो भैया जंगल में भी प्रकट हो सकता है। इसलिए हमें अपना साथी बनाना पड़ेगा, परात्म विद्या कांता सुखा, आत्मविद्या जिनकी सुखकारी सहचारिणी है, कांता है, प्रियतमा है, ऐसे लोग ही वन में सुखपूर्वक निवास कर सकते हैं, एकांत में सुखपूर्वक निवास कर सकते हैं। अध्यात्म विद्या का प्रकोट जिसके चारों तरफ नहीं है, अध्यात्म विद्या का प्रोटेक्शन जिसको नहीं मिला है, अध्यात्म विद्या का रक्षा कवच जिसको नहीं मिला है, बहुत मुश्किल है कि इस काली कोटरी से बेदाग कोई निकल जाए। परात्म विद्या कांता सुखा वन गृहे विचरन्ति धन्या। इसलिए हम सब साधकों के लिए आचार्य का यह आदेश है, अपना जीवन साथी खोजू, अपना लाइफ पार्टनर खोजो। अकेले तो इस प्राणी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसका बीज ही खराब है। एकाकी न रे में परमात्मा को अकेले अच्छा नहीं लगा था, इसलिए तो इतना लपड़ा खड़ा किया। एकाकी न रे में उपनिषद में आया है, उसको अकेले अच्छा नहीं लगा, और अकेले जब अच्छा नहीं लग रहा तो इतना उत्पात खड़ा किया। हमको अकेले अच्छा कैसे लगेगा भाई, उसी बीज की उत्पत्ति है हम, जब हमारा बीज ही खराब है। तो एकाकी नारे में अकेले तो अच्छा नहीं लगेगा, अकेले आप सुरक्षित भी नहीं है, अकेले आपको रहना भी नहीं है, आपको एक पार्टनर चाहिए, आपको एक सहयोगी चाहिए, आपको एक प्रोटेक्टर चाहिए, परंतु सहयोगी कौन होना चाहिए? परात्म विद्या। आत्म विद्या आपका सहचारी हो, आपका सहयोगी हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बाकी तो पार्टनर भैया काम ही बिगाड़ते हैं, प्रॉब्लम ही खड़े करते हैं। परात्म विद्या कांता सुखा वन गृहे विचरन्ति धन्या। इसलिए अध्यात्म विद्या का आश्रय लेना, आगे वाले श्लोक में बताएंगे, आत्मे चयो उपनिषद अर्थ रसम पिबंतः। आइए तीसरे श्लोक में प्रवेश करके ही इस चिंतन को आगे बढ़ाएं। त्यक्त्वा गृहे रति मदो गति हेतु भूताम् आत्मे चयोपनिषदार्थरसं पिबन्त वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गा धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गा। अब हमारी साधना को आचार्य थोड़ा और एडवांस स्टेज पर ले जा रहे हैं। त्यक्त्वा गृहे रतिम अधोगति हेतु भूताम। अधोगति हेतु भूताम, अधोगति का जो कारण है, अधोगति माने नरकादि में ले जाने का जो कारण है, क्या? गृहे रति, गृहे क्या मतलब है इसका? घर में किसका कारण है? किसका? गृहे रतिम अधोगति हेतु भूताम। त्यक्त्वा, इसको छोड़ करके, आत्मे छया उपनिषद रसम पिबंतः, आत्मे छया आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा से, आत्मा का आविष्कार करने की इच्छा से, अपने निज स्वरूप को जानने की इच्छा से क्या कर रहे हैं? रस पान कर रहे हैं। कौन सा रस पान? वो सुरापान वाला रस पान नहीं भैया, उपनिषद अर्थ रसम पिबंता। क्या ललित पदावली है, उपनिषद अर्थ रसम पिबंतः, उपनिषद के अर्थ के रस का पान कर रहे हैं। और जब व्यक्ति रस पी लेता है ना, रस मान कर लेता, तो मदमस्त हो जाता है, और मदमस्त होकर के अपनी मस्ती में खो जाता है। ऐसे ही ये साधक उपनिषद के अर्थ का रस पी करके वीतस्पृहा, सारी स्प्रियाएं, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, सारी दरिद्रता, सारी पीड़ाएं, सारी वेदनाएं, सारी समस्याएं सदा सदा के लिए उसकी चित्त भूमि से उखड़ करके बाहर निकल गई। वीत स्प्रिया विषय भोग पदे विरक्ता, विषयों की वासनाओं से, विषयों को भोगने की इच्छा से विरक्ता, भर गए, तृप्त हो गए, कोई जरूरत नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई इच्छा नहीं। विरक्त संगा, किसी के संग की उनको आवश्यकता नहीं, किसी के हेल्प की उसको आवश्यकता नहीं, किसी के जरूरत की उसको आवश्यकता नहीं। ये साधक की परिभाषाएं हैं भैया। जब तक हमें और किसी के हेल्प की जरूरत है, तब तक हम साधक नहीं हैं। विरक्त संगाहा, विजनेषु धन्याश्चरन्ति, ऐसे धन्य लोग हैं जो एकांत में विचरण करते हैं, एकांत में निवास करते हैं, एकांत में निवास करते हैं। क्या करें भैया, किधर जाइए? गुरु लोग तो ऐसा माने सिर में डंडा लेकर के खड़े रहते हैं ना, ये इधर से उधर देखने भी नहीं देती, और वहां चोट करते हैं जो हमारी सबसे कमजोर कड़ी होती है। एक गुरु का कर्तव्य है, एक आचार्य का कर्तव्य है कि हमें ठीक ठीक पथ दिखाए, हमें ठीक ठीक रास्ता दिखाए। शास्त्र का ये कर्तव्य है, इसीलिए तो लोग गुरु के सामने नतमस्तक होते हैं, इसीलिए तो लोग शास्त्र के सामने नतमस्तक होते हैं। शास्त्र भी और गुरु भी यदि हमारा मुख देख करके बात बोलने लगे तब तो हो गया हमारा कल्याण। इसलिए उनको तो वो बोलना है, कोई वैद्य आपका पिता हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका पति हो सकता है, परंतु जब उसको पता लगेगा कि इसका हाथ काटना इसके जिंदगी का कारण है, तो आपका मैं आपका भाई हूं, पति हूं, पुत्र हूं, मित्र हूं विचार नहीं करेगा, वो आरी लेकर के आएगा और जैसे बड़ी लकड़ी को काटता है इसे काट करके फेंक देगा। एक सुयोग्य पुत्र भी होगा तो अपनी मां का हाथ काट देगा, क्यों? उसको पता है यह हाथ काटना मां की जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है। जिस स्तनों का दूध पिया डॉक्टर है और कैंसर हो गया और उसको पता चल गया कि स्तन का छेदन करना ही मां के जिंदगी का कारण है, तो जिसका अमृत पी करके उसका जीवन बचा था उसको काट के फेंक देगा, क्यों? उसको पता है ये मां की जिंदगी के लिए जरूरी है, मां ज्यादा जरूरी है, मां का जीवन ज्यादा जरूरी है। आचार्यों के लिए साधक का कल्याण ज्यादा जरूरी है, इसलिए आचार्य का और सत्संग का कर्तव्य होता है थोड़े कठोर शब्दों में भी सत्य को खोल करके सामने रखा जाए। इसलिए यहां पर ये जो विवेचन कर रहे हैं, त्यक्त्वा गृहे रतिम अधोगति हेतु भूताम आत्मे क्षयोपनिषद रसम पिबंता ये ते धन्या, अधोगति के कारण भूत गृहशक्ति का जिसने त्याग कर करके निरंतर आत्मा की उपलब्धि को कराने वाले आत्म विषयक शास्त्रों का अनुचिंतन करते हैं, वे लोग इस संसार में प्रणम्य हैं, वे लोग इस संसार में धन्य हैं। गृहशक्ति हमारे आसक्तियों के बंधन में एक प्रबलतम आसक्ति है। पहले जिन आसक्तियों की बात करके आए, वो आसक्तियां हमारे दिल के भीतर बैठी हुई थी, विषयों की आसक्ति, द्वेष आदि शत्रुओं के साथ जिसकी दूसरे श्लोक में चर्चा हुई। अब बाहर हमारा चित्त कहां अटका हुआ है ज्यादा, वहां पर एक आघात आ रहा है, एक चेतावनी आ रही है। हम लोग पुराणों में बहुत बार सुनते हैं कि फलाना असुर मर नहीं रहा था, क्यों? कहा कि उसका प्राण वो किसी पिंजड़े में पड़े हुए तोते के भीतर था। बात सुनने में कैसी लगती है कि आदमी यहां लड़ रहा है और उसका प्राण जो है वो पिंजड़े के भीतर तोते में पड़ा हुआ है। भैया हमारा प्राण कहां कहां पड़ा हुआ है कुछ पता है कि नहीं? किस अलमारी में, किस बिल्डिंग में, किस बिजनेस में, हमको पता भी नहीं है कि पता नहीं कितनी जगह पर पड़ा हुआ है। उसका तो कम से कम एक ही तोते में था, तो जाकर के उसका गला मरोड़ दे तो वो असुर मर जाता था। और हमें यदि भगवान भी निपटाने के लिए आ जाए तो बहुत खोजना पड़ेगा कि भैया किधर किधर है इसका। एक बार हम लोग काशी में स्वाध्याय कर रहे थे, गृहशक्ति बड़ी बड़ी प्रबल आकर्षणीय होती है। हम लोग इतने वैराग्य की बातें सुनते हैं, इतनी भक्ति की बातें सुनते हैं, और जैसे ही प्रेमपुरी से बाहर निकलेंगे, लिफ्ट से नीचे उतरेंगे, गेट से बाहर निकलेंगे, धीरे 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 पैर घूमते 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 दे गेट पे दे बेल। ये ध्रुव सत्य है कि हम जब आए थे घर को लेकर के नहीं आए थे, और ये अटल सत्य है कि जब हम जाएंगे तो पोटली में बांध करके साथ में ले जा नहीं सकते, परंतु जब दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो एक ऐसी रस्सी बंधी हुई है, खींचते 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 ठीक वहां ले जाकर के खड़ा कर देगी जहां से हम निकल करके आए थे। तो एक स्वामी जी आए थे, तो स्वामी जी ने कहा कि महाराज बड़ा डर लगता है, हमारे गुरु जी के साथ चर्चा कर रहे थे, बोले बड़ा डर लगता है, बोले किससे, बोले आश्रम मठ मंदिर जब उनकी व्यवस्था देखते हैं, जब उनका संचालन देखते हैं, और जब उनको संचालन करने वाले लोगों के दिल की बात को जब जानते हैं तो बड़ा डर लगता है। बोले क्यों, बोले महाराज ये जो बिल्डिंग बनती है ना, इसमें जो ये एक एक ईंट चिपकाते हैं ना, ये ईंट से गारा से सीमेंट से नहीं चिपकाते हैं, वो अपनी आसक्ति दे दे करके अपना प्रेम दे दे करके एक एक ईंट को जोड़ता है, इसलिए एक ईंट हिल जाए तो उसका दिल हिलने लगता है। अरे बाप रे बाप, इतनी ईंटें जुड़ी हुई है और इतनी ईंटों के भीतर अपने को घुसा करके और जोड़ करके रखा है, जब खींचना होगा तो कैसे लगेगा। जैसे ये कपड़ा है, ये रूमाल है, इसको मैंने यहां निकाल करके रखा हुआ है, जब मेरे को उठाने की इच्छा है मैंने फट से उठा दिया, उठ गया कि नहीं उठा, और इसको यदि मैं फेविकोल से यहां पेस्ट कर दूं, बढ़िया से पेस्ट हो गया, अब फिर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको खींचेंगे, ची 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 करेगा, आधा टूटेगा, फिर आधा इधर से खींचने पर फटेगा, आधा इधर से खींचने पर फटेगा, फट फाट करके सत्यानाश होकर के रूमाल भी जाएगा और ठीक से निकलेगा भी। क्या हमारी भी दुर्दशा जब अंतिम समय आएगा तो ऐसी तो नहीं हो जाएगी। ये तो हमने जगह जगह फेविकोल करके अपने को पेस्ट करके रखा है, मैं आपने कल्पना की बात नहीं बता रहा हूं भैया, उपनिषद की बात बता रहा हूं। उपनिषद में बताया गया जब अंतिम समय इसके प्रयाण का समय आता है, जब भगवान के दूत आएंगे कि नहीं पता नहीं, यम के दूत जब लेने के लिए आते हैं तो वो लोहे का पास एक लेकर के आते हैं और आकर के उस जीव के गले में लोहे का पास बांध देते हैं, और एक तरफ ये परिवार वालों ने स्नेह का पास बांध करके रखा है, स्नेह के पास से बांध करके परिवार वाले इधर खींच रहे हैं, लोहे के पास से बांध करके यमराज के दूत उधर खींच रहे हैं, और ये महापुरुष बीच में लटक रहा है, राम 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 राम, क्या दुर्दशा होती होगी उस समय हम लोगों की। इसलिए भैया ये जो पेस्टिंग है, जगह जगह हम लोगों ने अपने जो फेविकोल करा करके चिपका के रखा है, इसको धीरे 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 साधक जितना कम कर देगा। अच्छा, जमराज के दूत यदि आ जाए और कहे चलो, और ये व्यक्ति गठड़ी बांध करके बैठा रहे, बोले भैया चल काम पक्का, तो क्या प्रॉब्लम क्या है, ये तो मुझे समझ में बहुत बार आता नहीं है। मैं जब बहुत गहराई से विचार करता हूं, ये शरीर सड़ चुका है, घुटने काम नहीं दे रहे, आंखों से दिख नहीं रहा है, खाया हुआ हजम नहीं होता है, शरीर का कोई ऐसा अणु परमाणु नहीं है जिसमें दर्द नहीं है, रात कराते कराते बीत जाती है, दिन में चैन नहीं है, और ये जरूर है कि जब यहां से जाएंगे तो एक न्यूबॉर्न बॉडी मिलेगी जिसमें आंखें ठीक से काम कर रही है, कान ठीक से काम कर रहा है, पाचन शक्ति ठीक से काम कर रही है, घुटने ठीक से काम कर रहे हैं, एक ब्रांड न्यू चीज मिलेगी। तो प्रॉब्लम क्या है, हैं? क्या प्रॉब्लम है आपका, यदि कपड़ा एकदम फट गया हो, पसीने से भर गया है, बदबू आ रही है, आपका जी घुट रहा है और कोई आकर के यदि न्यू बॉर्न ड्रेस ऑफर करे, नीट एंड क्लीन, प्रेस की हुई, तो पुरानी वाली फेंक करके नए पहन लेने में प्रॉब्लम क्या है? ये आसक्ति, अरे जिसके लिए मैंने जान लगा दी, ये परिवार, ये बिजनेस, ये मकान, ये अपने, ये कोई नहीं रहेगा, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, इस अज्ञात भय से हमारी चेतना कांपती रहती है, थर थर करते रहते हैं। इसलिए भैया सावधान, जो अपने ऊपर जितना काम कर लेगा, हम कितने भी रो लें, कितने भी गिड़गिड़ा लें, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सिंहासन में बैठ करके आपकी शव यात्रा निकाल रही है या एक जंजीरों में बांध करके आपको शमशान भूमि तक ले जाया जा रहा है, जाना दैट इज द फाइनल डिसीजन। तो भैया जब जाना ही है तो मार खा के क्यों जाना, रो रो करके क्यों जाना? व्यक्ति को अपने भीतर एक संतोष, एक विवेक, एक संज्ञान पैदा करना चाहिए। पुरुषार्थ से और प्रारब्ध से जो मिलना था सो मिल गया। देखो हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, जब उम्र की एक सीमा आ जाती है, हमारी नई पीढ़ी अपनी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेने के लिए जब तैयार हो जाती है, फिर भी हम अधिकार ट्रांसफर करने के लिए बहुत बार हमारा मानस, हमारा चित्त तैयार नहीं होता है। पता नहीं ये संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। अरे भैया ये यदि नहीं संभाल पाएंगे, आपके बिना यदि नहीं संभलेगा तो और कितने साल तक, 10 साल, 15 साल, 20 साल, एक ना एक दिन तो इनको अपने आप संभालना ना पड़ेगा कि आप यहां से पूरा शट डाउन करके जाओगे कि पूरा साथ में लेके जाओगे। हम ना शट डाउन करके जा सकते हैं ना पूरा साथ में लेके जा सकते हैं। जो भविष्य की पीढ़ी है उसको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी उसको अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी, और वो अपना प्रारब्ध लेकर के आया है भैया, अपने विवेक से और अपने प्रारब्ध से ही उसको आगे की जर्नी करनी पड़ेगी। हमारा विवेक जितना साथ दिया, हमारा सामर्थ्य ने जितना साथ दिया, हमारे शक्ति ने जितना साथ दिया, हमने निर्माण करके दे दिया। अब जरा उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए और अधिकारों को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, अपने को विरक्त करना चाहिए और अपनी जो नेक्स्ट जर्नी है, अपना जो आगे का भविष्य है, उसके लिए व्यक्ति को अपने आप तैयार करना चाहिए। और मेरी तो समझ ऐसी है भैया, आप चाहे आश्रम में रहे चाहे घर में रहे, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने विरक्ति की रक्षा करें। ये काम हमारे लिए और कोई नहीं करके दे सकता, ना आश्रम कर सकता ना घर कर सकता। आसक्ति आश्रम में भी उतनी ही मीठी लगती है जितनी घर में लगती है। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हम अपने मन को तैयार करें, हम अपने बुद्धि को तैयार करें, हम अपने चित्त को तैयार करें और धीरे 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 अपने भीतर विरक्ति का, असंगता का, निष्प्रियता का संस्कार पैदा करें और परमात्मा की एक स्टेज पर जाकर के व्यक्ति को निर्भर होकर के छोड़ देना चाहिए। अब परमात्मा की जैसी इच्छा है, उसको जैसे ले जाना है, उसको जैसे चलाना है, चलाए। अब मैं अपने आप को धीरे 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 नेक्स्ट जर्नी के लिए तैयार करूंगा, तभी भैया आसक्ति का बंधन थोड़ा कट सकता है और तभी ये जो हमारा भविष्य है, ये जो हमारा आगे का जीवन है, ये जो हमारा उत्कृष्ट जीवन है, ये बन सकता है। नहीं तो केवल यहां की आसक्तियों में हम यदि बंधे रह गए हाय ईंट हाय पत्थर हाय पैसा यदि रोते रह गए जिंदगी भर, तो न जाने हम किस अनंत अंधकार के एक गहरे घनघोर गहरे अंधकार के राज्य में समा जाएंगे। फिर न जाने कब मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर कब गुरु मिलेगा, फिर कब वेदांत मिलेगा, कब विवेक दोबारा उदय होगा, कब विवेक करेंगे विचार करेंगे और फिर कब मुक्ति के पथ पर चलेंगे, इसकी कोई निकट भविष्य में फिर कोई संभावना भी नहीं दिखती है। इसलिए हमें विवेक से, सावधानी से, सतर्कता से और ईमानदारी से अपने कल्याण के लिए, अपने विकास के लिए, और इससे केवल अपना ही कल्याण नहीं होता है, जब हम विरक्त हो जाते हैं सच्चे अर्थों में तब हम अच्छे गाइडेंस बन सकते हैं। और हमारा विरक्त होना हमारे बिजनेस के लिए खराब नहीं है, हमारे परिवार के लिए खराब नहीं है, हमारे संसार के लिए खराब नहीं है, बल्कि उनके लिए वरदान है। एक आसक्त व्यक्ति परफेक्ट जजमेंट कभी भी नहीं दे सकता, वो काम से प्रेरित है, वो क्रोध से प्रेरित है, वो लोभ से प्रेरित है, तो उसके जजमेंट में काम का अंश रहेगा, क्रोध का अंश रहेगा, लोभ का अंश रहेगा। एक विरक्त व्यक्ति, एक अनाशक्त व्यक्ति जितना सुंदर डिसीजन ले सकता है, जितना सुंदर जजमेंट दे सकता है, एक विरक्त व्यक्ति के अलावा एक आसक्त व्यक्ति उतना सुंदर डिसीजन नहीं दे सकता। हमारे अपने लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए, हमारे समाज के लिए हमें इतना स्टेप तो एक न एक दिन उठाना ही पड़ेगा, विरक्त होना ही पड़ेगा, अनाशक्त होना ही पड़ेगा, या अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए और अपने समाज के कल्याण के लिए, सब के लिए उपयोग। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं, हम सब साधकों को ऐसी शक्ति दे, ऐसा प्रबल प्रबोध दे कि एक अनाशक्ति, एक विरक्ति, एक वैराग्य हमारे दिल की गहराइयों में पैदा हो और उसकी शांति हमारे अपने जीवन को शांत करे, हमारे परिवार को शांत करे, हमारे परिवेश को शांत करे, हमारे समाज को शांत करे और पूरे विश्व में उस वैराग्य की, विरक्ति की, अनाशक्ति शांति का उद्घोष हो। इसी पावन भावना के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम।